আজকে দামোদর মাস্টি মহিম মহাত্মা কি বর্ণনা কি গেছে দিন ওনাদের মে আর কালকে কাল ক্লাস মে ব্রত কি পালন কে বিধি কি চর্চা কি গই থি আজ বিশেষ রূপ মে কার্তিক মহিনা মে জো মুখ্য মুখ্য ব্রত হে জিস ব্রত কো কার্তিক মহিনা মে জো সো বিশেষ ব্রত আতে হে মুখ্য ব্রত হে তো দামোদর ব্রত ইসকে আ ইসি মহিনা মে জো অন্য তিথি ভি হো সো আতে হে कृष्ण अष्टमी तिथि जिसमें राधा कुंड और श्याम कुंड की आविर्भाव हुई थी। इस महीने फिर गोपाष्टमी आता है, शुक्ल कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि में भगवान ने सबसे पहले गाय लेकर चराने गए थे, गोचारण मेला को प्रारंभ किए थे, पहले बछड़ा चरा चराते थे, बछड़ा चराते गोपाल को ने, तो इसलिए वो गोपाष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा इस महीने में गोवर्धन की पूजा, भगवान ने गोवर्धन की धारण किए थे, इसलिए इस महीने में गोवर्धन पूजा का भी विधि है, गिरिराज की पूजा में। इस महीने सब बहुत कुछ मुख्य तिथि उत्सव है। भीष्म पंचक अंतिम में इस महीने में फिर दीपावली, दीपावली आता है अंतिम में, कार्तिक महीने की जो अंतिम अंतिम पांच दिन है एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, तो उसको कहते हैं भीष्म पंचक। भीष्म देव ने ये पांच दिन के व्रत को रखे थे भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन से। यदि कोई इस पूरे कार्तिक व्रत को भी पालन नहीं कर पाता है तो ये पांच दिन भीष्म पंचक व्रत को धारण करने से संपूर्ण कार्तिक व्रत का संपूर्ण चतुर्मासी के व्रत का फल उसको मिल जाता है। तो इसलिए आज इन व्रतों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दामोदर व्रत, इस मुख्य जो इस महीना में दामोदर व्रत जो कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के नवम अध्याय में वर्णन आता है, किसका? दामोदर लीला भगवान की। तो उससे उसी लीला के आधार पर वही मुख्य आशय है जिसको इस क्रम में हम पालन करते हैं, भगवान दामोदर की अर्चन और इसका हम इनकी कार्तिक व्रत की सभी अंग और उनकी विधि की चर्चा कर रहे थे। तो उसके मुख्य विधि अंग बताया गया था कि हरिजागरणं प्रातः स्नानं तुलसी सेवनं उद्जापनं दीपदानं और व्रता तो ये पांच जो विशेष अंग है कार्तिक व्रत के, भगवान कितने सुबह अंतिम प्रहर में जागना, प्रातः स्नान करना, तुलसी महारानी की सेवा और दीपदान करना, दामोदर की पूजन और दीपदान, ये सब पहले आलोचना हो चुका है। ये सब व्रत व्रतधारी के लिए कर्तव्य है, कार्तिक महीना में ये मुख्य कर्तव्य कहा गया। इसलिए दामोदर की पूजा अभी एक महीने तक आप देखेंगे, आपके इधर विग्रह बना रहे थे कि नहीं
बनाए,
माँ यशोदा बांधते हुए किसको, कृष्ण को बंधे हुए, बंधे हुए भगवान, भगवान रोते ही रोते रहते हैं, आप सभी हंसते रहते हैं, रोते हुए भगवान को देखते हुए सभी लोग आज नहीं एक महीने तक हंसते रहेंगे, तो जानते कि ये झूठा रोना रोना है, सब सच रोना नहीं है। भगवान की दामोदर की जो कथा कैसे माँ यशोदा ने इनको बांधी, उसी के पहले थोड़ा संक्षेप पर चर्चा करेंगे, आगे करें और दूसरे पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। भला जो इस महीना में जिसके नाम पर इस महीना के नाम ही है दामोदर मास, दाम का अर्थ क्या, रसी, और उधर का अर्थ पेट, इनके पेट में रस्सी में बांधे थे, कौन बांधे थे, माँ यशोदा ने बांधे थे। जिस लीला के वर्णन ये दशम स्कंद की नवम अध्याय में वर्णन आती है, इसे अध्याय के दो श्लोक को धर्म शास्त्र में लिखा गया है, 21-22 लिखे हैं, आपको बताया था किसको लिखना है, उल्टा क्यों लिखे, जो श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट है इसको नहीं लिखे हैं, जिसके तात्पर्य में पढ़ूंगा, आपको जो बताया वो लिखना चाहिए, आपको उल्टे क्यों लिखे मन से। उस रूप को लिखने उसका तात्पर्य नहीं, कुछ नहीं उसको क्यों लिखने, क्यों गलती होगा? सिर्फ 20 नंबर है, 30 नंबर श्लोक इनको लिखने के लिए बोला, लेकिन वो 20 नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, जो सुखदेव गोस्वामी कहते कि नेमं विरिंच न भव न श्री श्रीरपि अंग संशया प्रसादं लभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदार। न तो भगवान ब्रह्मा, न भगवान शिव, नहीं भगवान के अर्धांगिनी लक्ष्मी ही इस भौतिक जगत में मुख्य दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसा कृपा प्राप्त कर सकती है जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की है। अर्थात अनंत भगवान अनंत को कौन बांध सकता है, क्योंकि ये अंत नहीं, आदि अंत नहीं है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, तो उनको बांधने का शक्ति किसी बद किसी जीव के पास में नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं कृपा करके ही माँ यशोदा के द्वारा बंधे गए। ये श्लोक लिखने बड़ा था, लेकिन ये तात्पर्य बड़े सुंदर तात्पर्य रूपा जी के द्वारा, लेकिन वो दूसरे श्लोक लिखे हैं, ठीक है। दूसरा श्लोक आप पढ़ सकते हैं। नायं सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुता ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिर्मतां इह नायं सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिर्मतां इह नायं सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिं मतामिह। नायं सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुतः का पुत्र कृष्ण ज्ञानिनां
च
तथा भगवन्धन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील ज्ञानियों का, आत्मभूतानां आत्मनिर्भर योगियों का, यथा जैसे भक्तिमतां भक्तों का यह इस जगत में। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद के ये अनुवाद। माता जशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मी घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं है। तो कह दोहराइए, माता जशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मीय घोर तपन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। माता जशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्या जोगियां ज्ञानियां तथा अध्यात्म बुद्धि वालों के लिए नहीं। यद्यपि इन्हें कभी कभी शांत भक्त का कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास्य रस से ही प्रारंभ होती है। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जे यथामान प्रबद्यन्ते तं तथैव अजाम्यहं, मम परमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। ये बात सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आता है मैं उसी तरह पुरस्कृत करता हूँ, हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है क्योंकि वे सारे जीवात्माओं की परमात्मा है। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और हर उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वह शरीर का भीतर आत्मा रूप में रहता है। और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अतएव हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में 15वां अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेद इष्ट सर्वैर अहम व्यक्ति हो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। इसलिए सारे कर्मी ज्ञानी जोगी तथा संत पुरुष कृष्ण की खोज करते हैं, किंतु कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का विशेषतया वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सान्निध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। जैसा कि कहा गया है, वृंदावन परित्यज्य पावनेकं न गच्छति, कृष्ण वृंदावन के क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। वृंदावन वासी माता जशोदा कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्ह का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु यदि साधन सिद्ध में लगे लोग कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संगियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ऐसे ही लोग हैं जो देहात्म बुद्धि में लिप्त रहते हैं। उदाहरणार्थ भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और इस तरह वे परम पूज्य ईश्वर है। दूसरे शब्द में भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव गुणावतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं, किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात्म बुद्धि नहीं रहती, वे भगवान के शुद्ध प्रेमा भक्ति में समर्पित रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि प्रेमा कुमार्थ महान, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रेमा अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। और माता जशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से है जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो दामोदर मास में ही माँ जशोदा ने कृष्ण को बांधी थी। कौन सा दिन था वो? कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर को दीपावली के दिन था, दिवाली के दिन। और जो साधारण तो दिवाली में जो छुट्टी छुट्टी मांगते हैं, जो काम करने वाले सब छुट्टी लेके जाते हैं, उस दिन आनंद मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। दिवाली किस लिए मनाया जाता है? विशेष रूप में उसी दिन रामचंद्र जी ने कहाँ प्रवेश किए थे? अयोध्या में प्रवेश किए थे, रावण को वध करने के उपरांत विमान में बैठकर आकर अयोध्या में उसी दिन प्रवेश किए थे। इसलिए अयोध्या को पूरा अयोध्या को दीप में सजाया गया था, बहुत सुंदर सजावट की थी। तो उसी महोत्सव को मनाने के लिए आज भी हम दीपावली मना रहे हैं, राम विजय की रामचंद्र जी को अयोध्या प्रवेश को स्मरण करते हुए। लेकिन उसी दिन इसलिए बड़ा उत्सव था और सब लोग साधारणतः जो नंद भवन में जितने जो नौकर और नौकरणियां थे तो वो सब कई लोग छुट्टी लेके सब घर चले गए थे। लेकिन फिर भी जो भी थे, कुछ लोग भी थे काम करने वाले, लेकिन माँ यशोदा सोचती थी कि मेरे जो ये लाला है कौन, कृष्ण कन्हैया, ये माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, चोरी करता है, हमके हर घर में घुस के क्या करता है, माखन चोरी करता है। अभी बचपन ही छोटा बच्चा है, अढ़ाई दिन से ऑफिस से चोरी करना शुरू कर दिया। आज माखन चोरी करेगा, थोड़ा बड़ा होते होते और भी कुछ चोरी करना स्वभाव बन जाएगा इसका। माँ तो प्रेम भक्त जी को माँ यशोदा कभी नहीं सोची कि कृष्ण कौन है। भगवान चाहे गर्भमुनि बता के गया कि ये नारायण सरण तुम आपके लिए पुत्र है, ये कहने पर भी माँ यशोदा को कभी भी ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि कन्हैया मेरा कौन, भगवान है। भगवान कोई झूठ कहता है, माँ कैसे विश्वास होगा? माखन चोरी करने वाला, झूठ कहने वाला ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान बन सकता है? कभी विश्वास नहीं होती थी माँ यशोदा। तो इसलिए उन्होंने सोची कि हो सकती है हमारे घर में तो 9 लाख गया नंद महाराज के थे, लेकिन फिर माखन का कोई कमी नहीं था अपने घर में, दूध दही माखन घी कोई भी दूध का प्रोडक्ट कम नहीं था, फिर भी कन्हैया क्यों चोरी करने जाता? सोचता कि ये लग रहा है कि हमारे घर के जो क्वालिटी, जो माखन का क्वालिटी इतना अच्छा, हमारा जो दास दासी ठीक से माखन नहीं तैयार करते। इसलिए माँ यशोदा ने स्वयं नंदरानी होते हुए भी रज की अधीश्वर नंद बाबा की पत्नी होते हुए वो सोची मैं स्वयं अपने हाथ से ही मेरा कन्हैया के लिए माखन तैयार करके तैयार करूंगी और वो इतनी स्वादिष्ट बनाऊंगी, फिर कन्हैया और दूसरे के माखन खाना भूल जाएगा। और वो विशेष गाय, एक प्रकार की गाय रहते पद्मगंधा गाय, उनके शरीर से पद्म के जैसे कमल के फूल जैसे खुशबू आती थी और उनके दूध से भी, तो ऐसे ही गाय के वो नंद महाराज के घर में रहते थे, कुछ गाय चौसला मैया उनको पालन करते थे। और उस गाय के पद्मगंधा गाय के दूध को एकत्रित करके और उससे उसको उगाल कर उससे दही बनाकर न दही से फिर माखन निकालते थे कन्हैया के लिए। उस दिवाली का दिन था, कृष्ण सो रहे थे, कन्हैया अपने सज्जा पर सो रहे थे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोए हुए थे। माँ यशोदा ने कन्हैया को निहारते हुए अपने सज्जा त्याग कर दधि मंथन करने प्रारंभ कर दी। अब कन्हैया तो सोए हुए थे, लेकिन जो माँ दधि मंथन करने यशोदा ने अपने लाला के जो बचपन का जो लीला है सब स्मरण करते हुए, कैसे इन्होंने पुत्रा को वध किए, कैसे शंकरासुर को वध किए, तुणावर्त को वध किए, सब लीला को स्मरण करते हुए छोटे छोटे गीत बनाकर पद बनाकर माँ गा रही थी। बड़े प्रसन्नता से माँ गा रही थी और दही दधि भी मंथन कर रही थी। लेकिन इसी समय नींद तोड़ गया इनका, कन्हैया का नींद तोड़ गया। कन्हैया बिस्तर से उतर आए, उतर कर सीधे आ गए माँ आँख को ऐसे मलते हुए, आँख को मलते हुए पहुँच गए माँ के पास। देखिए कि माँ दधि मंथन कर, लेकिन वो सीधे जाके देखिए माँ तो उनको ध्यान नहीं दे रही थी, माँ देख रहे हंस रही क्या कर रही है, देखें देखना चाहते माँ हंसते कि इसका क्या बुद्धि है। कृष्ण सीधे जाकर दधि मंथन करने वाला बीच का जो क्या था दधि मंथन का जो दंड था उसी को पकड़ लिए, दोनों हाथ में पकड़ के रुक गए। बस माँ ने बड़ा खुश हुई, बोला देखो मेरा लाला तो इतना बुद्धि हो गई, ये वो कैसा मैं मैंने पूरा काम से बंद करना जानती है, तुरंत ये जो और कुछ पकड़ते तो वो बंद नहीं होता, लेकिन पूरा दधि मंथन का दंड का बीच में जो दंड है जिसमें रस्सी ऐसे बंधा हुआ रस्सी खींच रही थी, तो दंड को ही जाकर उसको दोनों हाथ में पकड़ लिया, बंद कर देगा। माँ बड़ा प्रसन्न हो गई, माँ के कभी समझ गई भूख का उसको अभी स्तनपान करने की इच्छा है, किसको कृष्ण को मेरे स्तन से दूध पान करने की इच्छा है। बड़े प्रेम से माँ बैठ गई अपने बच्चे को लेकर गोद में और बहुत उनके मुखारविंद को निहारती रही। इनके भगवान कितनी सुंदर है, कंदर को कोटि गमनीय विशेष शोकम, इतनी सुंदर बच्चा मात्र सुधा को प्राप्त हुई है, यही जन्म की तपस्या से भगवान उनके पुत्र बन गए। मुखारविंद को निहारते हुई माँ जसोदा ने और उनको स्तनपान कराने लगी, लेकिन इसी समय देखी कि दूसरे कमरे में हैं किचन जहाँ पर दूध सब गर्म की जाती थी, और दूध की कढ़ाई में दूध एक कढ़ाई में दूध उबाल रही है, वही पद्मगंधा गाय की जो दूध जिसने जिस गाय जिस दूध को बड़े सतर्कता से कृष्ण के लिए वो उबाल रही थी, जिसको गर्म कर रही थी, उसमें पूरा दूध पूरा उबालते हुए बाहर निकाल जा रहे थे, दूध बाहर पात्र से बाहर गिर रही थी। इसको देखकर माँ जसोदा ने तुरंत ही कृष्ण को साइड में ऐसे रख दी, पी रहे थे बोले ऐसे रख दी, रखकर चले गए उस दूध को रखा करने के लिए, क्योंकि गलती का दूध भी कृष्ण की लीला में जो भी सब होते हैं ये सब जड़ वस्तु नहीं होते, सब चेतन है। दूध भी जब उगाल मैंने गर्म हो रहा था वो पात्र में, सोचा कि ये तो सारे दूध माँ के स्तन से ही सारा दूध पी लेते, मेरा बेकार मैं बेकार के धर्म के पात्र में रहूँगा, मैं सब अपने ही मैं सुसाइड करता हूँ, तो वो उगा कर बाहर निकल जा रहे। लेकिन जो है लेकिन माँ सोचता भी सोचे कि ये कृष्ण के लिए दूध माँ रक्षा करने के लिए गई, किसके लिए ये दूध किसके लिए था, कृष्ण के लिए ही था, कृष्ण के लिए से ही वो दूध से फिर दही और माखन बने। माँ उत्तर चक्र चल गए, लेकिन जीव गोस्वर कहते कि माँ जसोदा ऐसा ही नहीं चले, उन्होंने कृष्ण को कहे कि कन्हैया मैं जाता हूँ दूध दूध उबाल रहे ना, उसको रख कर मैंने तो उसको देखभाल करके आता हूँ, तुम इधर इसको देखते रहना, किसको दधी का जो पात्र है दधी भांड है इसको देखते रहना, मैं आ रहा हूँ, कहकर माँ जसोदा जो रख के साइड करके चले गए। लेकिन कृष्ण को तो बड़ा क्रोध है, बोले कैसा ही है ही मुझे पता नहीं लग रहा मैं कौन हूँ, इसको पता ही नहीं है, मुझे ऐसा ही व्यक्ति है मुझे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव है सारे 33 करोड़ देवता है, बड़े बड़े जोगी मुनि ऋषि हजार हजार साल तपस्या करके मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और ये मैं इसका पुत्र रूप में आता मुझे ऐसा ही साइड में करके चलो, बड़ा क्रोध आ गया भगवान, दांत ऐसे लाल लाल वोट ने वोट दांत में काटते हुए सोचने में क्या करूँ इसको, अरे क्या करूँ ये मुझे ऐसे ही निगलेक्ट करके चले साइड करके बस रख के चले, क्रोध है बात में साइड में देखे क्या मिला, एक छोटा पत्थर मिल गया, ऐसे मिल गया मारे कौन से वो तभी जो भांड था उसमें मारे मिट्टी का भांड तो छिद्र बन गया, अब तुरंत वहां से दही पात्र से दही नीचे बहने लगी, भगवान समझ गए अभी तो अपराधी बन गए, दही निकल मां आए कि अभी शासन कर कुछ ना कुछ थप्पड़ लगाए कि ये मुझे मानने वाला नहीं है, भगवान को अनुभव है वो आएगा कान पकड़ के थप्पड़ लगा दे उसको मैं क्या करूँ, अभी समझ के जब कहीं पहले इनको अनुभव था, एक बार माँ जसोदा पहले भी ऐसे डांट रहे थे किनको कृष्ण, कृष्ण बहुत डांट रहे थे कन्हे कुछ ऐसे दोष किए थे बड़ों साल के जो कंप्लेन किए थे, माँ इसलिए कृष्ण को कान पकड़ के थप्पड़ लगा रहे थे और बोले बांध दूंगे थे, तभी तब माने कृष्ण ने चिल्लाए किनको बोला है दाऊ जी ये मुझे बांध रही है मुझे मार रही है, दाऊ जी आ गए कौन क्यों बांध रहे छोड़ इसको इसको पिटाई नहीं करना, क्या हुआ माँ जसोदा को क्या हुआ, ना मैं बोल रहा हूं इसको नहीं पिटाई करना इसको तो थप्पड़ नहीं लगाना इसको बांधना नहीं, क्यों तुम कौन है बोलने वाला, बोला मैं कौन हूं तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं स्वयं अनंत शेष का भी स्रोत हूं, मैं बोल रहा हूं अनंत शेष मेरा ही विस्तार है, हजार गुण में अशेष ब्रह्मांड में धारण करके रखा हूं मेरा ही विस्तार के रूप में, चाहूंगा तो एक सेकंड में अशेष को ब्रह्मांड में प्रलय कर सकता हूं फिर सृष्टि कर सकता हूं, बड़ा क्रोध में बलराम बोल रहे थे बहुत क्रोध है क्रोधित हो, छोड़ इसको ये मेरा प्रभु है ये कौन है, बोला ये मेरे से भी उपाय ये कौन है ना ये नारायण है स्वयं नारायण का भी स्रोत है, बड़े क्रोध में बलराम बोल रहे मां उसने कह दिया अच्छा ये तुम अनंत ये अनंत अनुशेष है और ये नारायण है, तुमको जन्म लेने का और कोई जगह नहीं तो मेरा ही घर में अपने दासी को बोले कि मेरी छड़ी ला छड़ी ला दिखा कर कौन अनंत अनुशेष है कौन नारायण है इनका दिखा रहे तुम निकाल रहे माँ के हाथ पर जसोदा के हाथ में छड़ी देखते ही भाग गए बलराम जो इतने दांत में बड़े क्रोधित होकर भाग गए। और कृष्ण ने बिचारे तो कृष्ण को अनुभव है माँ जसोदा की प्रेम के सामने इनकी जो ऐश्वर्य काम नहीं करने वाला है, इनकी जो भगवत्ता का ऐश्वर्य भगवत्ता वो माँ जसोदा के शुद्ध प्रेम के सामने काम करने वाला नहीं है। भगवान की भगवान भूत्य वत्सल आगे पिछले श्लोक में कहेगी सुनते सभी भूत्य वत्सल भगवान के गुण है कि अपने भृत्य अपने सेवकों की अधीन में रहते हैं। भक्त वत्स भृत्य वत्स भक्ताधीन है भगवान सब समय होते हैं, भक्तों को ही अधिक श्रेष्ठ स्थान देते हैं। तो इसलिए बोले कि अब कृष्ण समझ रहे थे बांधेगी दही को भी निकाल रही है, अभी आ जाएगी तो बांध ले क्या करूँ अभी, इसलिए तुरंत ही छोटे छोटे पैर वैसे भाग के दूसरे कमरे में चले गए। जिस कमरे में क्या रहता था सिक्के पर माखन सब ताजा माखन बना हुआ है कि माँ ने सब संग्रह करके रखे थे और कई प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट्स को उस कमरे में सब रखा जाता था, कृष्ण के खाने के लिए सब रखा गया था। भगवान ने गए मसाला पिछले वाले पिछली वाली जो मसाला पिसा जाता था उखल उसको उल्टा दी और उसके ऊपर चढ़ के सिक्के से निकालने लगे क्या है माखन ताजा माखन उठ कर खाए आराम से कुछ खाया। कृष्ण को देखकर वो बंदर लोग भी आ गए दूसरे कमरे में, उसके कमरा के एक गेट बाहर की तरफ था, भगवान खोल दिए दर्जा और बंदर लोग सब आ गए। बंदर के सब भगवान ने देखे कि लोग बहुत परिश्रम किया था कब रतयामी रावण के साथ में जो मेरे जो युद्ध हुआ था ये बेचारे कितने कष्ट करके मेरी सहायता किए थे, उस समय तो बहुत तपस्या किए लोग खाना पाना ठीक से उनको मिला नहीं था, इसलिए भगवान ने अपने हाथ से खिला रहे थे बंदर को खिला रहे थे खाते थे माखन और उनको भी खिला बंदर को जो माखन हाथ बंदर बड़े प्रेम से भगवान के हाथ से माखन ले लेकर खाते थे हैं। और दूसरा मिल्क प्रोडक्ट था दही था और कई प्रकार की मिठाई तो बंदर को खिला खिला देते माखन। माँ जसोदा आ गई दूध दूध की बर्तन को उतार कर नीचे रखकर आ गए आकर देखने लगे कहाँ गया कहीं उन्हें आग देखी कि अग्नि छिद्र हो चुके दही बह रही है पत्र पत्र के सारा दही समाप्त हो चुकी है सारे साइड पूरे दही से लथपथ हो गई पूरा आंगन। इसको देखकर समझ गए किसका काम है क्योंकि कृष्ण उधर थे नहीं कन्हैया है नहीं तो समझ गए काम किसका है और देखिए उधर से इसमें एक छिद्र बना हुआ कभी तो पत्थर मार के इसमें छिद्र बना दिया तो समझ में आ गए लेकिन ढूंढने लगे कहाँ गई है कन्हैया तो समझ गए लेकिन वो कभी मुस्कुरा रहे थे माँ जसोदा क्रोधित नहीं हुई हंस रहे थे कि मेरे लाला है बड़े बुद्धिमान है पत्थर मार के पात्र में कहाँ छुप गया तो लेकिन उनको ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि भगवान के चरण का चिन्ह दही के ऊपर चल चल के जा दही तो फेर गया था उसी के ऊपर चल चल के जाने के बाद उनके पैर गिला हो गया था जहाँ गए तो पद चिन्ह से पड़ा था भगवान जाकर पहुंच गई कमरे में देखे माँ नहीं हो कृष्ण भी बंदर को माखन तो खिला खुद खा रहे थे माखन को खिलाते थे बंदर को लेकिन बड़े सतर्कता से इधर उधर देख रहे थे जानते थे कि मैं अपराधी बन गए वो आने वाली है कौन माँ आएगी देख रहे थे लेकिन तो तुरंत देख लीजिए माँ आती है और ये भी माँ जसोदा ने छेड़िए से पीछे छुपा के रखी दिए छुपा कर छेड़े आ रहे थे छेड़ी को देख लिए तुरंत उतर मैंने शिलंग लगाया किसे उखड़ से कूद गए और भागने लगे सीधे भाग गए बाहर चले गए। माँ जसोदा कभी अपने नंद भवन के बाहर ऐसे ही खुले जगह पर नहीं जाते लेकिन उस दिन पहले दिन था जिस दिन कृष्ण को पकड़ने के लिए बाहर जाना पड़ा पीछे भागने लगे कि नहीं कृष्ण कन्हैया भाग रहे थे लेकिन सीधे नहीं जा रहे थे कृष्ण कैसे सर्प गति सर्प गति सांप कैसे चलता है सांप ऐसे सीधा नहीं जाता ऐसा ऐसे थोड़ा घूम घूम ऐसे ऐसे अब भगवान ऐसे सर्प गति में ऐसे घूमते घूमते ऐसे ही जाने लगे तो माँ जसोदा तो ऐसे ही स्त्री थी उसकी कमर पतली थी स्थूल शरीर प्रौढ़ अवस्था में माँ जसोदा का पूरी युवती नहीं थी प्रौढ़ अवस्था में थी इसको भागना में इसके पीछे ऐसे ही घूमते घूमते थक जाते संभव नहीं हो पाता था लेकिन कृष्ण ने ऐसे ही भागते और पीछे देखते थे पर भागते थे रो भी थे रो रहे थे भाग रहे थे झूठा रोना ही लेकिन ये झूठा भगवान जो रोना था ये झूठा रोना था। माँ जसोदा भागते भागते उनकी सारे सिर के जो केश विन्यास सब बिखर गई इसमें मालती की फूल कई प्रकार के फूल थे फूल सब गिर गए फूल सब निकाल के केश पाए खुल गया सारा शरीर पसीना में लोथपथ हो गया लेकिन माँ जसोदा फिर भी भाग रहे थे पीछे पकड़ के ही रहूंगा इसको कन्हैया जिद्दी भी था भक्त और भगवान की जो जिद्दी होता परास्त किसको 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 हार मानना पड़ता है भगवान देखिए कि माँ मेरी इतनी परिश्रम करें नहीं तो जसोदा कहाँ से पकड़ गए हैं। पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य गम्य वायु रथापि मनस उन्नीकुंदवाना। इनको ये बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग ने कई दिनों तपस्या करके इनको मैंने धारण ध्यान करके इनको ऐद करना चाहते वो इनको पकड़ नहीं पाते हैं। वायु की गति से मन की गति से भी जिनको पकड़ा नहीं जा सकता है और उनको जसोदा पकड़ना चाहती है पीछे भाग रहे। लेकिन भगवान की कई प्रकार की शक्ति उनके ऐसे कई प्रकार की शक्ति भगवत्ता का परिचय के देती है। ऐसे शक्ति सभी शक्ति की ऊपर भी उनकी एक शक्ति है कृपा शक्ति है। जो भगवान के प्रति भगवान के भक्त के प्रति कृपा होती है ये कृपा शक्ति फिर अन्य सारे शक्ति को डाउन कर देती है फिर वो भक्त की आयत में आ जाती है भक्ताधीन हो जाते हैं। माँ जसोदा की इतनी परिश्रम देखकर भगवान को बड़ा दया आ गई। भगवान प्लान बने हुए सोचे कि इसकी ये मुझे पकड़ लेनी थी कितना परेशान हो रही बेचारी इतनी भाग रही कृष्णा ने नहीं तो भगवान को जब इच्छा नहीं करेंगे इनको और पकड़ लेंगे। तो भगवान ने लेकिन कहा था फिर भी गोपाल चंद्र जी कृष्ण कहते कहते माँ मुझे वो छड़ी फेंक दो पहले क्या छड़ी के पीछे पकड़ी हो वो फेंक दो मुझे उसको फेंको फेंको इसको। लेकिन फेंकती नहीं थी माँ तो वो भाग रहे थे वहां से फेंको छड़ी छड़ी जो पकड़ी है आपने इसको फेंको डर रहे भगवान। लेकिन ऐसा होते हुए भगवान फिर अंत में खड़े हो गए जगह पर स्थिर हो गए जस्ता मैं तुरंत ही पकड़ ली। लेकिन भगवान कहेगी मुझे मारना नहीं मार मुझे मार पीटना नहीं छड़ी मुझे पीटना नहीं। फिर माँ जसोदा ने ऐसे ही अभिनय कर रहे थे पूरा डर गए जैसे भगवान ने ऐसा ही अभिनय मारा मुखा मुख की भंगी ऐसे ही कर रहे थे ऐसा पूरा भयभीत है वो डर गए। अभी जिनको स्वयं काल भी भय करता है किनको भगवान को जब विभेदी स्वयं स्वयं भय स्वयं भय भी जिसको भय करता है जस्यां गया भ्रमति संभृत काल चक्र जिनके आदेश में काल चक्र भी कार्य करती है आज वो स्वयं भयभीत हो रहे किसको माँ जसोदा के हाथ में रहने वाला छड़ी को देख रहे हैं भगवान भयभीत हो गए। माँ जसोदा देखी कि लाला मेरा बड़ा भयभीत हो गए और वो छड़ी को भी नीचे नीचे फेंक। लेकिन थोड़ा माँ बेटा में थोड़ा तर्क होने लगा है माँ तब भी हम मुस्कुरा रहे थे जसोदा लेकिन चोर तुम चोर है मैंने कृष्ण कहे बोलते तुम चोर है तुम चोरों की सरदार है गोपाल चंद में से गुरु सामने देखते हैं। कृष्ण कह माँ कह रहे थे जसोदा कह रहे थे तो कृष्ण भी बोलते कि माँ मुस्कुरा रही है और मजाक कर रही है तुम्हारे सीरियसली नहीं बोल रहे लेकिन भगवान भी मजाक करना शुरू कर रहे हैं। भगवान कहे कि मैं चोर नहीं हूँ कि मेरा पिताजी नंद बाबा भी चोर नहीं है तुम चोर हो और तुम्हारे माँ तुम्हारे तुम्हारा जो पिताजी तुम्हारे नाना हमारा नाना है ये सब चोर है, है? मेरे पिताजी चोर नहीं है नंद चोर नहीं क्या हमारा कौन से कोई चोर नहीं है। बात जसोदा ने लेकिन तुम बंदर के साथ मिलते है बंदर को माखन खिलाता है बंदर के साथ मित्रता है तुम्हारा है बंदर के साथ में मिलजुल करके तुम भी तुम्हारा स्वभाव भी बंदर जैसे बन गया। भगवान ने कहे कि ठीक है मेरा स्वभाव बंदर जैसा बन गया तो बंदर के साथ रहूंगा अभी आज से मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा जंगल में किसके साथ रहूंगा बंदर के साथ रहूंगा। उनको हो रहा कि बंदर मेरे मित्र हैं बंदर के साथ रहूंगा तो तभी माँ को डरा कि हटीला लाला है ये जब जिद्दी पकड़ लेता कुछ भी कर सकता है अभी बोल रहा है घर में कोई नहीं है कोई नौकरी भी नहीं है मेरे को सारे अकेले सारे काम करना पड़ता है कितनी काम पड़ा हुआ घर में और ये कह रहा कि वो चले जाएगा कहाँ बंदर के साथ देख रहेगा अब तभी माँ जसोदा सोच कि तो फिर इसको तो कहीं लटके मैंने बांध के रखना पड़ेगा नहीं तो सोच कर बोल रहा है जंगल में चले जाएगा तो मुझे कौन इसको देखभाल करेगा है ऐसा। इसलिए दिव्य संगति माँ जसोदा ने निर्णय लिया कि इसको बांधने के लिए ऐसे इसलिए माँ जसोदा ने सोची कि ये बंदर के साथ चले जाएगा जंगल में चले जाएगा मेरे सारे काम यहाँ मैं इतने कार्य पड़ा हुआ कौन देखेगा ये सोचकर माँ जसोदा ने निर्णय लिया कि आज इनको बांध दूंगा बांध के फिर जाऊंगा। तभी माँ जसोदा ने देखी कि उखड़ में जिस उखड़ के ऊपर भगवान ने इसे उल्टा कर उसके ऊपर बैठ कर माखन खा रहे थे माखन को चुरे लुटे और सिक्के से माखन उतारे थे क्योंकि ये भी पाप किया है कौन ये उखड़ इसलिए दोनों को बांधूंगा एक साथ उखड़ के साथ तुमको बांधूंगा। ये सोचकर भगवान ने माँ ने कन्या को कहे कन्या ठीक है
तुम बंदर के जंगल में जाओगे कैसे, शक्ति है तो चले जाना जंगल में, अभी तुमको बांध के जाऊंगा मैं, इधर बांधूंगा आज माँ जो कह रहे बांधूंगा तो भगवान रोना शुरू कर दिए तो चिल्लाने लगे दाऊ जी रोहिणी भैया कहाँ है, मुझे ये बांध रही है, मुझे पिटाई कर रही है। तो लेकिन दोनों थे नहीं है, क्योंकि उस दिन निमंत्रण था रोहिणी माता किसका, कन्हैया का, तिन्ने वो बलराम जी को, उपनंद जो कि नंद बाबा के बड़ा भाई है, तो उनको अपने घर में कुछ फेस्टिवल के कारण, दिवाली के कारण कुछ का, तो इन्विटेशन, स्पेशल इन्विटेशन दिया। तो दोनों उनके घर में चले गए थे, सुबह उठ उठ के चले गए थे, तो पास में कोई था नहीं, भगवान चिल्लाने लगे तो आसपास के जो सब वयोवृद्ध गोपियां जो कि जसोदा के सब सखियां थे, वो सब अपने अपने घर से निकाल के आए, क्या हो रहा है ये कन्हैया क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है, सब देखने के लिए आ गए, सब दूसरे स्त्रियां सब आ गए। तो माँ जसोदा ने सबसे पहले अपने सिर की जो रसील को मैंने अपने जो केश विन्यास करने के लिए दो क्या कहते हैं रिवन, रिवन से जो बांध देते तो उसमें से खोली, वही रिवन पहले एक खोल के बाद ने उखल के साथ उखल में ऐसे गांठ लगे, कृष्ण फिर कृष्ण के शरीर में ऐसे गांठ ऐसे लेकर गांठ लगाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे क्या हो गया, दो अंगली छोटा पड़ गया गांठ लगाने, फिर दूसरा दो रिवन थी तो दूसरा भी लाए तो उसको भी जोड़कर फिर बांधने के प्रयास किए तो फिर हेर दो आंगली छूटे। बोले क्या हो रहा है, और वो सब सारे वयोवृद्ध गोपियाँ जो जसोदा की उम्र के सब थे सखियाँ सब आ गए खड़े होकर, वो भी मजाक देख रहे थे, कन्हैया तो अपने ऐसे ही भंगी में खड़े थे भयभीत होकर हैं, और ये माँ जसोदा बांधने के लिए बोले कि और रस्सी लाओ, और तो वो लोग भी भाग भाग के जाके सब रस्सी लेके आते, जसोदा माँ के घर में जितनी भी रस्सी था हैं, तो ये कहते कि जो ये सिर के रस्सी सफिशियंट नहीं हुआ, फिर वो बछड़ों की जो क्या दूध दूध निकालने के लिए गाय से बछड़ों की नहीं गाय के पिछले पैर को जो बांधते थे रस्सी, तो उसको छान कर वो रस्सी भी सब लाए ने जोड़े। इसी माँ जसोदा घर में जितने भी रस्सी था सब ला ला के जितने भी बांधते रहे, लेकिन रस्सी तो इतनी मोटे हो गए लेकिन गांठ नहीं डाल गए, बार बार ऐसे घुमा फिरा के रस्सी को, फिर उखल के साथ और कन्हैया के साथ रस्सी घुमा के गांठ देने के टाइम में दो आंगली छोटा है। बोले ये क्या चल रहा है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रही माँ जसोदा को, सारी गोपियां कर दिया छोड़ दे जसोदा इसको, उसके भाग्य में बांधना है नहीं है, ये बांधा नहीं जा सकता, छोड़ दे इसको। माँ जसोदा कहेगी नहीं तो बांध के ही रहूंगा, तुम लोग सब ऐसे ही मजा देखने वाले हो, डेली कंप्लेन करोगे कन्हैया जाकर मेरे घर में माखन चोरी कर रहा है, हर दिन आके कंप्लेन करोगे, और मैं इसको जो दंड देना चाहूंगा, फिर तुम लोग बोले छोड़ दे इसको ना हंसा बाबा रहा है, तुम लोग का क्या ड्रामा मुझे समझ में नहीं आया, तुम इसको अंदर से प्यार करते हो और अंदर ऊपर से आकर मेरे पास में कंप्लेन करते हो, नहीं इसको मैं बांधूंगा कैसे भी हो, पूरे पसीना में लथपथ हो गई माँ जसोदा, लेकिन जिद ही छोड़े रहे बांध के ही रहूंगा इसको, आज भगवान देख रहे हैं क्या करेंगे, उनके पास उद्रेक हो गए कि ये कितना परिश्रम की है, ये दो आंगुली इसलिए छोटा पड़ता था जब तक भक्त पूरे परिश्रम नहीं करेगा, उद्यम के साथ प्रचेष्टा नहीं करेगा, पूरे पूर्ण प्रयास सारे शक्ति सामर्थ्य लगा कर बड़ा बुद्धि काय मानव मनो वाक्य में संपूर्ण रूप में भगवान चरण में समर्पण नहीं होगा, तभी भगवान की कृपा नहीं मिलता है, और जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगा तब तक किसी सिद्धि किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए भगवान इसको दर्शाए माँ जसोदा जब पूरे संपूर्ण रूप में परिश्रम करके एकदम अंतिम चेष्टा जितनी भी शक्ति सामर्थ्य थी उसके संपूर्ण चेष्टा कर ली, भगवान के मन में दया आ गई, भगवान चाहे कि अभी मुझे बांध ले, नहीं तो भगवान को कौन बांध सकते, को समझ कौन बांध सकता है, तो जिनकी कोई अंदर बाहर कुछ नहीं सर्वव्यापक है सर्वत्र जो व्याप्त है, भले माया को दिखाए थे सारा मुख में सारे अंदर में क्या है वशेष कोटि ब्रह्मांड, लेकिन माँ जसोदा उस समय भी विश्वास नहीं थी, लेकिन क्या हो गया ब्रह्मांड घाट में प्रभु हमारी मिट्टी खाने का लीला में दिखाए थे ब्रह्मांड, मिट्टी देखना चाहे तो मिट्टी है कि नहीं मुख दिखाए, लेकिन माँ जसोदा इस नहीं तो सोचती थी कोई ऐसा ही कुछ कोई मैंने कन्हैया का प्रति कोई बुरा प्रभाव है कुछ तंत्र मंत्र का कोई अन्य ग्रह इष्ट के कारण ऐसे हो रहा है, आज भगवान मन में दया आ गई माँ का इतनी परिश्रम देख कर दया आ गई, भगवान सोचते ठीक है मुझे भगवान भगवान की कृपा शक्ति है राज मैंने माँ मैंने कृष्ण को राजी करा दी तुमको बांध दे ये भक्त है तुम्हारा इतना परिश्रम, तो इसलिए भगवान ने फिर ठीक तो भगवान जब स्वयं राजी हो गए बाजी मुझे बांध ले, तो फिर इतनी रस्सी का जरूरत नहीं पड़ा, सारा रस्सी जो इतनी सारे काटी हुआ सारे रस्सी को फेंक कर फिर पहले जो वही दो जो रिबन सिर से निकल थी वही दो रिबन को जोड़ कर नहीं केवल दो ही रिबन में ही भगवान बांधे भगवान की डाल दी माँ जशोदा और गांव देव सक्सेसफुल हो गए बड़ा गर्व लगा कहा नहीं आज अभी शक्ति है तो जाना निकल जाना अभी माखन चोरी करना बांध दी है मेरे कितने काम पड़ा है काम करने जा रहे हैं भगवान बांध दी और सारे बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत आ गए थे कृष्ण के साथ सम वयस्क के बच्चे से दो अढ़ाई साल तीन साल वाले बच्चे से वो आकर इकट्ठे हो गए थे माँ जशोदा करके इसको एक अध्याय को घेर के रहो इसके ही इधर उधर भागेगा नहीं जैसे आपको तो बांध दिया जो कि भाग नहीं सकता लेकिन तुम लोग इसको इसके साथ रहो ना तो भगवान ने जो माँ जशोदा ने बांध दी तो भगवान रोना शुरू कर दिया रो रहे थे आँख पे सर मलते मलते रो रहे थे और माँ जशोदा जो घर के अंदर चले गए जितने वयोज्येष्ठ गोपियाँ थे तो सब माँ जशोदा के पीछे पीछे वो भी नंद भवन का अंदर चले गए बाहर में कौन रह गया कन्हैया रह गए बंधे हुए उखल में उखल के साथ बंधे हुए और बच्चे लोग चारों साइड माँ जशोदा घर के अंदर प्रवेश करते ही कन्हैया का अपने आँख से हाथ उतार दिए और हंसने लगे सब बच्चे को देखकर हंसने लग रहा सभी बच्चा हंसने लगे एक साथ कन्हैया हंसे तो सब हंसने लगे कन्हैया करके अरे अभी बहुत सुजग अच्छा है ये सारे चले गए चल लगे ना मेरे माँ के पीछे चले गए उनके घर से खाली गए घर में कोई नहीं है जाओ जाओ फीस्ट बनाए जाओ सब माखन लूट के लिए उनके घर में जाओ ये सारे बच्चों को भेज दिए भगवान ने जाओ सबके घर से ये सारे इधर आ गए हमारे घर में भी माँ घर माँ के घर जाओ सब लूट के लाओ तो भाग्य से बच्चे लोग कन्या कहने पर है जब फिर और माखन लूट के लाए वहाँ बड़ा फीस्ट बनाए लेकिन भगवान कहे देखे हैं अभी कुछ करना चाहिए कुछ बंधा हुआ माता मैंने गोकुल में बांध दिया मुझे और क्या करूँ प्रेम से वो अपने भक्ति से मुझे बांध दी जैसे श्लोक कहा कि भगवान किसी अन्य उपाय से प्राप्त नहीं होते हैं जो वह ध्यान तपस्या कर्म इसकी माध्यम से नहीं केवल प्रेम प्रेम वही भक्ति की माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है माँ जशोदा इसी कारण से इनको प्राप्त की बांध दी है केवल भक्ति की प्रेम और भक्ति के कारण उनको बांधने में सक्षम हुई थी और भगवान ने सोची कुछ तो करना चाहिए कुछ तो और कुछ लटपट करना चाहिए इतने सारे राक्षसों को मार मार के आया लेकिन अभी ये बांध दिया जब मुझे रस्सी में कुछ तो करना चाहिए आसपास में सीधे सब देखने लगे चारों साइड बच्चों लोग भी उसे बड़ा नाच रहे थे माखन खा कर और कुछ डेंसिंग कर रहे थे भगवान देखे कि अच्छे सामने देखे दो मुख्य खड़े थे कौन जामला अर्जुन दो मुख्य जामल मैंने दोनों एक साथ में बीच में थोड़ा सा कहीं जगह था पास करने के भगवान समझ गए कि ये दोनों मुख्य जो जामला अर्जुन कई हजार साल से यहाँ पर खड़े हैं नंद भवन के अंदर में और इनको वरदान दिया है कौन वो नारद जी का अभिशाप नहीं था वरदान था कि प्रकृति में भगवान इनको उद्धार करेंगे उन्होंने कहे थे कि ये कुबेर के पुत्र थे नौ कुबेर मणिग्रीव ये ऐसे उलग्न होकर अप्सरा के साथ में मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे नारद जी उस पर मार्ग पर आने पर भी ये निर्लज होकर जो स्त्रियां तो थे अप्सराएं वो तो अपने वस्त्र में शरीर ढांक लिए लेकिन ये दोनों ऐसे नंगे खड़े रहे उसे नारद जी ने सोचे कि ये दोनों कल्याण कैसे हो ऐसे ही नहीं कि दुर्वासा की तरफ तुरंत अभिशाप दे नहीं नारद ने पहले सोचे कि कल्याण कैसे हो सकता क्योंकि ठीक है जो हमेशा नंगे रहने वाले शास्त्र कहते कि वो आगरा जन्म क्या मिलता है इनको वृक्ष का जन्म इनको वृक्ष ही बनना ही उचित है लेकिन जो मेरे सामने आ गए तो इनको उद्धार कैसे करूँ मैं कहे कि ठीक है तुम्हें ऐसे नंगे खड़े हो वृक्ष के रूप में तुम वृक्ष ही बन जाओ ऐसे देवता जोनी में रहना लायक नहीं है देवलोक में लेकिन सोचे कहाँ वृक्ष रखेंगे लेकिन नंद महाराज के अंदर में गोकुल में जाकर नंद महाराज के अंदर में वहां वृक्ष बन के रहोगे वहीं जाकर गोकुल में वृक्ष बनो बाद में नंद महाराज जो जाएंगे तो फिर जो कृष्ण द्वापर में गिरा के लिए आए तो वो आपको उद्धार करेंगे ये अभिशाप था कि आशीर्वाद था शायद भगवान को दर्शन देंगे और स्वयं उद्धार करेंगे इसलिए अपने भक्त नारद मुनि की वचन को याद आ गया कहेंगे भक्त की वचन को रक्षा करना मेरा धर्म है चलो भगवान ने देखे कि मेरे उकलते उकल बंधा हुआ पीछे से घिचिरते घिचिरते हैं रेंगते हुए डरते घूमकर के सहारा से ऐसे चलते चलते दोनों मुठे के नीचे कुछ आगे आगे चले गए लेकिन लटक गया पीछे से जो उकल था दोनों मुठे के बीच में लटक गया लौटक गया तो थोड़ा सा शक्ति खर्चा करके भगवान ने थोड़ा आगे और बढ़ने के लिए ऐसा प्रयास, तुरंत ही दोनों भूखे बहुत जोर से आवाज करके गिर पड़े। इतना जोर से आवाज होगी कि आवाज पूरा कहां तक पहुंच गया, स्वर्ग में ब्रह्मा जी जहां रहा तो वहां तक सर्वत्र फैल गया आवाज। और नंद महाराज अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, सब अपने मैंने पार्षद उपनंद और उनके मंत्री सब और सब कई वयोवृद्ध गोपों के साथ में बैठे थे ऑफिस में। इतना बड़ा आवाज कहां से, कोई झड़ है नहीं, तूफान नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, इतनी बड़ी आवाज कहां से आया, कुछ अघटन हुआ क्या हुआ? बड़ा चिंतित होकर ऑफिस के बाहर आ गए और देखे कि ये दोनों जामणा अर्जुन उठके गिरे हुए, जो कि कई हजार सालों से इधर खड़े थे और इतनी विशाल थे कि इनको गिरने का ऐसे ही कोई साधारण गिरा नहीं सकता, कोई झड़ तूफान में भी गिरने का कोई कारण नहीं होता। तो पास में आए आके देखे कि ये दोनों वृक्ष के बीच में कौन है, कन्हैया। कन्हैया अभी तक नहीं हंस रहे, उन्हें रो रही, कुछ नहीं, बड़ा हंसते थे, बच्चों को देखकर हंस रहे थे। मतलब कि देखे कि जब ये दोनों वृक्ष गिर गया और उनके अंदर से वो देवता निकले और कुछ कृष्ण के साथ में कुछ हाथ जोड़कर कृष्ण को स्तुति किए, कुछ बातचीत किए और कृष्ण को परिक्रमा करके फिर चले गए अपने, देखे थे बच्चे लोग। लेकिन नंद महाराज आए तो भगवान अभी तक बड़ा खुश थे, बड़े तो हंस रहे थे, बच्चों को देखकर मजाक कर रहे थे, हंस रहा हंसी तो मजाक चल रहा था। लेकिन जब नंद महाराज आ गए तो रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। पिताजी को देखे, नंद महाराज बड़ा व्याकुलित हो गए, उनके हृदय पर पिघल, पास में आकर तुरंत ही रस्सी को खोला, जिस रस्सी में महाराज ने बांधी थी रस्सी को खोल के गांठ को खोल के भगवान तुरंत ही अपने गोद में ले लिया। ये रस्सी और कोई खोलने का शक्ति नहीं था किसी के पास में, इसकी पहले भी सब गोपियां आकर कहते थे कि बच्चे लोग बोलते हम खोल देंगे कन्हैया रस्सी खोल दें, लेकिन कन्हैया कह रहे थे कि ये रस्सी को खोलने का शक्ति और किसी के पास में नहीं है, ये ऐसा ही गांठ नहीं पड़ा है, ये वात्सल्य प्रेम की गांठ है, इसका माँ यशोदा ने गांठ कर दी। जैसे कोई भाव जाता नहीं, कोई क्या मधुमक्खी जाता है कमल फूल के मधु चूसने के लिए, कमल फूल के अंदर में जब प्रवेश कर जाता मधु, ऐसे मधु चूसते रहता, लेकिन जानता है सूर्य अस्त होते ही वो कमल कमल का फूल ऐसे ही बुझ जाएगा, उसके अंदर रहने से वो बाहर निकल नहीं पाएगा, लेकिन इसके प्रेम इतनी घनिष्ठ हो जाता पद्म फूल में वो बाहर नहीं निकलता, ऐसे इसको बंद करके ही कमल का सारे कपड़े बंद करते और उसके अंदर मर जाता, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के बाहर नहीं निकला। भगवान कहे कि मेरे तो स्थिति ऐसा ही है, चाहे मैं सर्वशक्तिमान हूँ सब कुछ हूँ, लेकिन ये जो गांठ डाला है मेरे मां ने प्रेम भक्ति के वात्सल्य के गांठ, जिसको प्रेम उसी स्तर पर हो वही केवल खोल सकते, जो गांठ डाला वही खोल सकते, नहीं तो उसी स्तर पर प्रेम यदि कोई दूसरे भक्ति हो वो खोल सकता है, और दूसरे किसी की शक्ति नहीं है इसको खोलने का। इसलिए नंद महाराज का प्रेम माँ यशोदा के स्तर पर थे, इसलिए नंद महाराज आकर उस गांठ को खोले, खोल के कन्या को ले लिए, कन्या तो बहुत जोर से रो रहे थे, अभी हंस रहा था मजाक कर रहा, लेकिन अभी को नंद महाराज देखकर बड़ा रोने लगे, उनकी हृदय पर व्याकुल हो गया, उनके कान ने ऐसे गला को पकड़ कर कन्या ने पूरा दोनों गला ऐसा हाथ में पकड़ के और नंद महाराज को मुख को निहारते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर। नंद महाराज बोले कन्या, नंद महाराज का मुख आंख से भी अश्रू आ गया कन्या का रोना देख कर, तुझे इसे कौन बांधा, ऐसे कौन किया, एक ही पुत्र मेरा और ये बुद्ध अवस्था में इसको बांध दिया कौन, ऐसा अखों में कौन बांधा, कन्हैया तुझे कौन बांधा। बड़े धीरे से कन्हैया ने कान में बोले कि मणिया ने बांधा, ने बांधा। जो मारे नंद महाराज बड़ा गुस्सा है, किसी जसोदा ऐसे कार्य कैसे कर सकती, लाला को इसी मेरे इतनी सुंदर सुकुमार लाला मेरा और उसको कैसे बांध सकती, उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया, क्रोध आ गया किसके प्रति, लेकिन सब लोग सोच रहे कि दोनों दुखी कैसे गिरे, सारे बच्चे लोग कह रहे थे ये दुखी यही नहीं गिराया, इसने गिराया, सारे बच्चे लोग चिल्ला रहे थे यही इसने गिराया, यही कन्हैया ने गिराया, ये आगे जाकर खींचा ऐसे रस्सी ऊपर लटक गया और ये दोनों कौन विश्वास करेंगे, दो ढाई साल के बालक है ये, इतने छोटा सा तो खींचा तो कैसे गिर जाएगा, लेकिन बालक बच्चे लोग ने बड़े जोर जोर से बोले नहीं नहीं यही नहीं इसने गिराया, इनकी बात विश्वास नहीं करते सब, बोले यार ये बच्चों की बात बाल का नहीं, बच्चों की बात का क्या विश्वास करते, कैसे वो बच्चे कहे नहीं नहीं ये मुख्य से दो लोग निकले, दो देवता निकला और इनको स्तुति किया, क्या क्या बातचीत किया इनके साथ चले, वो बात जितने कहने पर ही बच्चों की बात कही विश्वास करने वाला नहीं है। कन्हैया देख रहे थे बच्चों की तरफ और हंस रहे थे, बोले कि इनके बात कौन भी बोलने भी इनके बात कौन सुनने वाला, लेकिन नंद बाबा फिर कन्हैया कैसे रखे उसी समय आ गए रोहिणी माता, ये इतने बड़ा आवाज हो गया, घटना हो गया, दोनों पुच्छे गिर गए, सारा ब्रज में हल्ला मच गया और रोहिणी और बलराम दोनों भी वापस आ गए घर में। तो जसोदा ने तो ये जो आवाज सुनी तो उठे गिरने का सब लोग खबर मिला कि कन्हैया दोनों उठे के बीच में आ गए, तो वो तो इस बात को सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन जसोदा, जसोदा को उठाया, उठाने के बाद वो भी दर्जनों जो जाके सब आए, नंद महाराज ने कहे कि तो वो उस दिन तो नंद महाराज ने कृष्ण बलराम दोनों को लेकर जमुना में स्नान करके आए और दोनों को बैठा कर साथ में क्या भोजन कराया, रोहिणी माता ने खिलाए। शाम तक जसोदा माया ने घर के अंदर ऐसे खाए पिए बिना ऐसा ही मुख नीचे करके ही पड़ी हुई थी, ऐसे रो रही थी, मैं क्या किया, अपने पश्चाताप कर रही थी कि मैं कन्हैया को बांध दिया कैसे, आज यदि वृक्ष उसकी पर गिर जाते क्या होता है, वो अपने पश्चाताप कर रही थी। लेकिन नंद बाबा सब दूसरे दासी बाबा विशेष में रोहिणी माता आकर कहने लगी कि नंद बाबा देखो नंद महाराज को, आपकी पत्नी कौन जसोदा, आप दिन भर ऐसे ही कुछ खाए नहीं है, पिए नहीं, वो नहीं खाने के कारण कोई दास दासी हम भी नहीं खाए, दिन भर सब उपवास पड़े हुए हैं, वो दिन भर बोल रही है, आप कुछ कीजिए, इसको बोलो कि आकर भोजन करें। नंद बाबा ने कहे कि तो जैसे कार्य की अपने कार्य का फल वो भोग रही, मैं इसमें क्या करूं हैं। तभी रोहिणी ने रोने बोले कि ऐसा कहना ठीक नहीं, जसोदा के हृदय कितने कोमल है, अपने लाला के लिए उसके हृदय में कितनी प्रेम है, आप ऐसे ही बोलोगे तो वो बहुत दुखी हो जाए। अभी नंद बाबा ने थोड़ा कन्हैया की तरफ कही, कन्हैया जाओ तुम्हारा माँ के पास जाओ, जसोदा और खाई नहीं दिन भर पड़े, जाओ माँ के पास जाओ। बोला मैं नहीं जाऊंगा माँ के पास, मैं नहीं जाऊंगा, आपको और जोर से जाओ पकड़ के रखो, बिल्कुल नंद बाबा मैं नहीं जाऊंगा, कान और गले को और लपट के रहने लगे। नंद बाबा आंख को आंख में अश्रु बहते आपको छल छल करते और नंद बाबा को मुख को देखने लगे, तो नंद बाबा तो और भाव में भी होड़ हो गए, उनकी आंख से भी अश्रु गिरने लगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उन्हें मुझे बांध दी, मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। दूसरे बहन का तो माँ के पास नहीं जाएगा, खाएगा क्या, उसे संतान दूध कौन पिलाएगा। बोला मैंने काली गाय के दूध पी लूंगा, मेरे जो पद्मगंधा गाय है उनके दूध पी लूंगी, गाय भी मेरी माँ है उनका दूध पी लूंगा, उसमें शक्कर मिला के मेरे दा मेरे मैंने क्या बाबा ने नंद बाबा के पास इतना शक्कर मिला मुझे पिला देंगे, पी लूंगा, मुझे नहीं जाऊंगा उसके पास, मुझे बांध देती है, पिटाई करती है, हाँ उसके पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कहने लगे तो कृष्ण ने तो रोहिणी ने बोले कृष्ण तुम ऐसा क्यों है बोल रहा है, तुम्हारा माँ कितनी तुमको प्रेम करती है। तो नंद बाबा कहे तो रोहिणी माता के पास जा, कन्हैया जाओ रोहिणी माता बुला रहे हैं। बोले नहीं इसके पास में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे दाऊ बुला रहे, जब खेल बोला दाऊ के पास नहीं जाऊंगी, रोहिणी के पास नहीं जाऊंगी, ये मुझे छोड़ के चला गया किसके घर, पुनंद के घर में सुबह सुबह चला गया है, ये लोग यदि होते मुझे इतने बांध, ये लोग मुझे छोड़ के पास मुझे अपना है नहीं, ये अपने चले गए, रिमांड इन्विटेशन मिला है, दाऊ और रोहिणी चला गए दोनों पास, माँ बेटे चले गए, मेरे पास सोचे नहीं, मैं कभी भी इनके पास भी नहीं जाऊंगा। तो वो बात को छोड़ कर मेरे देखने रोहिणी तो रोहिणी तो रोने लगी, बोले कन्हैया इतना निष्ठुर हो रहा है, इतनी कठोर वचन कैसे कह रहा है, हमारे कोई प्रेम नहीं है तुम्हारे प्रति, तुम ऐसे ही कह रहा है। इसको देखते हुए तो हैं तो नंद बाबा ने कहे कि ठीक है, जानते कि इसके माँ के प्रति प्रेम है कन्हैया का, इसलिए ऊपर से पृथ्वी पर कहे कि ठीक है कन्हैया, तुम्हारे माँ ने ऐसे ही तुमको बांध दी तो आज मैं तुमको पिटाई करूंगा, इसको तुम्हारा माँ पर पिटाई करूंगा, लाठी लाओ तो मेरा डंडा लाओ, डंडा ऐसे जो नंद महाराज जैसे कहते डंडा हाथ में लेके आए तो तुरंत ही नहीं प्रेम तो है माँ के प्रति, नंद महाराज कहते आज माँ को पिटाई कर दूंगा तुम्हारे माँ पर जैसे काम की, तो तुरंत ही पकड़ लिया हाथ, कौन नहीं माँ को नहीं जाओ पिटाई नहीं कर, तुरंत ही कन्हैया फिर उतर कर नंद महाराज की जब गले के बोध में थे तो उतर कर फिर गई आस्ते आस्ते जसोदा की कमरा में, मैया मैया बोला नहीं माँ जसोदा की बात्सल्य मैं उठे उठे कन्हैया मैया कन्हैया दोनों परस्पर को आनंद कर रही है, माँ जसोदा आलिंगन कर रही परस्पर को है। तो फिर बोले माँ जसोदा को लेकिन मैं माखन नहीं खाया, ये जो माखन जो चूरा उन्होंने तुम बोला कि दधी का मटका कैसे तोड़ा, मैंने थोड़ी तोड़ा, तुमने जो जा गए थे, तुम जो दूध रखने के लिए गए दूध को उबाला देखकर भाग रहे थे, तुम्हारा पैर का जो इतना बड़ा क्या बगला लगा था वो लग गया, वो तो मटका मैं तोड़ते लग के तोड़ गया था, मैं थोड़ी तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा। बंदर का बारे में क्या कहो, तुम्हारा दर्जा कैसे खोला था, बंदर लोग आकर माखन लूट रहे थे, मैं तो आके बंदर को भागा रहा था, और तुमने उल्टा मुझे बंदर के काफी बंदर की दोस्ती किया है। मैंने कहा माखन खाया, मैंने माखन, लेकिन अभी जब देखी माँ भी रो रहे कन्या है रो रहे, और प्रसिद्ध वजन आप सुने, मैंने ही माखन खाया, मैं माखन नहीं खाया, मैंने ही माखन, बड़ा बात चातुरी से। तो भगवान ने फिर माँ को, दोनों माँ बेटे फिर परस्पर आलिंगन करके रो रहे थे, नंद बाबा एक दूसरे को देखकर उन्होंने भी रोने लगे, सब लोग। फिर कृष्ण ने कन्हैया ने दुसुदा को पकड़ के लेकर प्रसाद लाकर वहां पर बाजू में बैठकर माँ को खाए, तभी दुसुदा प्रसाद स्वीकार। सभी विषय बहुत सुंदर भाव से लिखते हैं गोपाल चंद्र कैसे मिलन बाप ले, इसलिए ये इस महीने में ये लीला हुआ था कि बांधे थे माँ जसोदा बांध रही थी, इसलिए उनके नाम दामोदर, इनके उदर से दाम कदा रसी और उदर पेट उदर का, तो इसमें माँ जसोदा बांध दी थी। इस लीला को स्मरण करके साल भर ने सर ये महीना भर हम देख रहे हैं, भक्त लोग देखते हैं कि रोते हुए कृष्ण बांध रही अरे खा रहे हैं फल के साथ बांध रहे, तो उसको देख कर इस विशेष लड़ा को स्मरण करते हैं कि भगवान की भक्त श्रोता को हम इस पूरे महीना दामोदर अष्टक गाते रहे। शाम के समय गुरुपाद ने सिस्टम रखा इस कर प्रत्येक दिन शाम को क्या करना, दिन में रामोदर की अर्चना, सुबह दामोदर अर्चना और दामोदर के श्रृंगार होता, शाम के समय दीपदान देना और दामोदर अष्टक गाना। अभी लास्ट में कहेंगे गाय क्लास की लास्ट में दामोदर गाएंगे। तो इस प्रकार ये मुख्य लीला है जो इस महीना में कार्तिक महीना में जो व्रत है दामोदर। लेकिन जीव गोस्वामी ने कहा कि ये दामोदर व्रत वात्सल्य रस की भक्तों के लिए तो ये माँ जसोदा की प्रेम है, लेकिन हम तो साधारण गौड़ीय वैष्णव जो लोग कहते हैं गौड़ीय वैष्णवजन माधुर्य प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जसोदा के प्रेम से भी किसका प्रेम श्रेष्ठ मानते हैं, जसोदा के प्रेम से भी राधा रानी के प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं, गौड़ीय वैष्णवजन माधुर्य प्रेम को वात्सल्य प्रेम से भी श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसी कहानी एक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक अपने पुस्तकों में लिखते हैं कि एक कहानी किस प्रकार, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ जसोदा को कहने लगे कि नैसरी राधा रानी को कहते थे कृष्ण कि राधा तुमने मुझे जितनी प्रिया है, जितनी प्रेम करती हो बात, तुम मुझे जितनी प्रिय है ऐसा संसार में कोई भी नहीं है, तुम मुझे बड़ा प्रिय है, तुम मेरे प्रेयसी हो, ये बहुत कुछ उनको ग्लोरी का है। राधा रानी हंसने लगे, बोले कि आप झूठ बोलने के तो एक्सपर्ट हो, हमेशा झूठ बोलते हो, हम जानते हैं आप क्या हो, मैं चंद्रावली के पास भी जागो तो चंद्रावली को ऐसे ही कहे तुम्हारा मुख है, तो और मैं सबको बार मेरे पास भी कहते आप जो यदि वो मैं भी तुम्हारा प्रेयसी हूँ, लेकिन माँ जसोदा के प्रेम क्या मेरे से कमी है, तो माँ का प्रेम क्या मेरे प्रेम से कम ही है। तो भगवान ने कहे कि नहीं, तुम भी एक दिन सिखाऊंगा कैसे प्रकृत में मेरा प्रेम किसके प्रति अधिक है, बस तुम्हारा प्रेम किसका प्रेम अधिक है। इसलिए वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कहानी देखते किस प्रकार, एक दिन राधा रानी सखी सब मिलकर कृष्ण को क्या, कृष्ण के बच्चा अपने बाल कृष्ण खड़ा रहे, कृष्ण से ज्यादा उम्र भी नहीं, तो उन खेल रहे तो उनके साथ में डांस कर रहे थे, पप्पू के साथ में भगवान डांस करते थे, डांस कर रहे थे, तो जसोदा बाई देखी तो अभी मेरे गाया अपने बछड़े चले गए, कन्हैया आया मैं इनको सुला कर आया खिला पिला कि ये लोग उसको उठा कर लाके नृत्य कराना शुरू कर दिए, और गोपियों को डांट कि तुमने क्या कर रहे हो, मेरे लाला को थका रात भर हमने सोए, हमने वो सोया नहीं, नहीं वो भी दिन भर सोए परिश्रम करके आए, तुम फिर इसको लाके लौटे नचाने शुरू कर दे, तुम लोग ऐसा ही करके मेरे कन्हैया को बीमार में डाल दो, ऐसा बहुत कुछ कर ले। राधा रानी कहती है तुम्हारा कन्हैया नहीं है, हमारा कन्हैया है, ये हमारा कृष्ण है, तुम्हारा कृष्ण नहीं, तुम्हारा कृष्ण तुम देखो तुम्हारे घर में होगा, जसोदा मन में राधा ऐसा क्या बोल रहे, तो गए घूम के जाके देखे सतपुरुष तो उनके कन्हैया सोया हुआ कहाँ सज्जा पर, सुन कन्हैया अपना सज्जा पर लेटे हुए, आश्चर्यचकित हो गया कि देख रहे कि दूसरा कन्या के साथ नृत्य नृत्य कर रहा है कृष्ण। तो जसोदा कहे कि राधा सही बात है, मेरा कन्या तो सोया हुआ लेकिन ये कन्या कहाँ से आया, ये कृष्ण कहाँ से आया, दोनों तो एक ही जैसे देख रहे हैं, अंग भंगी सब कुछ, चेहरा सब कुछ, वस्त्र जैसे सब कुछ एक ही है, तो दो कृष्ण और एक कृष्ण तो मेरे कन्या को मैं उठा कर लाता हूँ, दोनों कृष्ण को मिलाएंगे, दोनों कृष्ण एक साथ में नृत्य करेंगे। तो बोले कि ठीक है, लेकिन राधा ने कहेंगे ये बात तो सही है लेकिन हमारा कृष्ण बाद में तुम्हारा कृष्ण, यदि हमारा कृष्ण तुम्हारा कृष्ण बदल बदल हो जाएंगे इसमें क्या हो, तो इसलिए माँ दशरथ ने जाकर कृष्ण को उठा कर लिया, एक बड़ा कहानी में संस्कृत में उठा कर लिया है, लेकिन दोनों कृष्ण खा तो राधा रानी ने कहे कि देखो माँ दशरथा, मेरा हमारा जो कृष्ण है, मेरा कृष्ण को मैं यहाँ पर तिलक लगा देती हूँ, यहाँ तिलक लगा देती हूँ, तो इसलिए पहचान जाएगा कौन सा कृष्ण किसका, नृत्य करते दोनों दोनों कृष्ण को नृत्य किए, बस गोपियाँ लोग ने सब कहा ताली मार के सब सब म्यूजिक भी कई लोग बजाने लगे और दोनों कृष्ण नृत्य करने लगे, बहुत दो कृष्ण माँ दशरथा ने देख लिया, लेकिन साथ जो नृत्य आगे बढ़ने लगा, बहुत उन्मत्त नृत्य होने लगा, हटा देखे कि दो कृष्ण नहीं है कि कृष्ण, माँ दशरथा भी कह रही है मेरा कन्या कहाँ है, मेरे कन्या कहाँ है, कहाँ गए मेरा कन्या, राधा मेरा कन्या, बोला पता नहीं, ये देखो तो तिलक लगा हुआ, ये मेरा कन्या है, ये तो इसीलिए नृत्य का पहले बोल दी थी, नृत्य के प्रारंभ से ही बोल दी थी कि कोई मिक्सा हो मिक्सअप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा फिर हमारा, तो इसलिए मेरा कन्या का हमारा कृष्ण को हम लगा दिए थे तिलक, देखिए यह तिलक लगाने वाला कन्या ये हमारा है, ये आपका कन्या कहाँ गया हमें पता नहीं। माँ जसोदा तो कहे कि मेरी एक ही लाला है, वृद्ध अवस्था में हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ, कहाँ चला गया क्या करूँ, अभी रोने लगे बहुत जोर से कन्या है, नहीं वो रोते रोते मूर्छित होकर है कि ये नया बछड़ा की खो जाने से गाय की जैसे स्थिति बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, अम्बा रडी करते करते वो कहीं पर गिरती उठती है, लेकिन माँ जसोदा तो पूरा मूर्छित होकर गिर गिर, तभी तो भगवान भगवान ने देखी, नहीं राधारण ने देखी कृष्ण जी को, जसोदा मूर्छित अभी क्या करें, मेरा माँ मूर्छित होगी गिर पड़ी है, भगवान फिर मुस्कुराए बोले यही तो आपको प्रमाण करना था कि देखो प्रेम तुम्हारा मेरे प्रति ज्यादा है कि माँ की, कृष्ण किसके है, राधा की है कि जसोदा की है, दोनों डांसिंग करते लेकिन तुम्हारे तुम्हारे तुम जिस जिस रूप में मुझे देखे तुम्हारे साथ में जो नृत्य करने वाला है कृष्ण वही रह गए, ये तो उसमें अंतर ध्यान हो गए, इनमें वही कृष्ण में समा गए जो राधारानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो उसकी बात राधारानी ने देखे कृष्ण मेरी बड़ा भीड़ दिखा, तुम्हारा माँ उचित होकर गिर पड़ी है शरीर छूट गए तो क्या करो, राधा ने फिर इनको जुड़ाए सब प्यार बन जगाए, राधा ने कही देखो तुम्हारा कृष्ण तुम जाके माँ देखो ना जसोदा तुम्हारे घर में सोया होगा थक गया होगा नृत्य करके थक के सोया होगा, सब तो सब माँ जसोदा दुआ कर देख रही थी आपने कन्या पूरा कहते कि प्रकृत में प्रेम जो है जसोदा राधारण के प्रेम से भी राधारण का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, माधुर्य प्रेम के अंदर में ही बात चल रही है, राधारण केवल माँ कृष्ण के साथ में नृत्य नहीं करती है भगवान के लिए भी खाना बनाती है, भगवान सब समय किसकी कुकिंग खाते हैं, जसोदा की कुकिंग नहीं है, सब समय राधारानी की कुकिंग खाते हैं, क्योंकि बचपन से ये दुर्वासा मुनि की वरदान को उपलक्ष्य करके सारे ब्रजवासी लोग ने ही माँ जो निर्णय किया कि राधा के हाथ से कुकिंग जो खाएगा वो सब समय निरोग रहेगा, तो इसलिए राधारानी हमेशा कुकिंग करते थे भगवान की, मैंने भगवान को कुकिंग करके खिलाना और इनके सारे प्रकार के लालन पालन वो भी राधारानी भी उसके प्रति रखे देते थे भगवान को, इसलिए जीव गोस्वामी कहते कि ये राधा दामोदर की जो लीला 22 महीने में केवल जसोदा ने राधारानी को नहीं बांधी थी, नहीं सॉरी केवल जसोदा ने कृष्ण को नहीं बांधी थी राधारानी भी कृष्ण को बांधी, इस कार्तिक महीना भी ये एक प्रकार लीला हुआ था कि एक बार राधा कृष्ण दोनों मिला होने के लिए बरसाना और नंदगांव के बीच में संकेत आता था, वहाँ पर निर्णय किया था कि यहीं पर मिलेंगे दोनों सखी लोग, अरेंजमेंट किया था वृंदा देवी और जुगमाया सब पूर्णमा से अरेंजमेंट किए थे, लेकिन कृष्ण तो पहले आग्रह के साथ आ गए लेकिन राधारानी नहीं आए थे, भगवान ने बड़ा बड़ा उस मैंने धैर्य रहा होगी और इतनी धैर्य रहा होगी सुख भागे सीधे बरसाना के मारे, बरसाना में पहुंचकर देखिए कृष्णभान के मैंने मोहर में दर्जे पर कोई नहीं सीधे घुस गए अंदर, सीधे अंदर में घुसते हुए राधारानी के अंतकक्ष में पहुंच गई जहाँ राधारानी ने स्वयं क्या कर रहे थे श्रृंगार कर रहे थे, एकाध में उनके सखी मंजरी लोगों ने उनको श्रृंगार कर रहे थे राधारानी के आने के लिए, वो आएंगे उसमें श्रृंगार हो, पूरा श्रृंगार कम्प्लीट नहीं हुई है सही है, केश विन्यास हो रहे थे शुरू का, तो आप ऐना है सही, सीधे सामने राधारणी को ऐना थी, बड़ा दर्पण थे, कृष्ण पीछे से आए तो देख लिए कृष्ण, वहाँ देख लिए कृष्ण आ गए, बड़ा बड़ा मैंने डिस्टर्ब हो गई, एक तुम्हें इस समय कृष्ण को आने का कोई चांस ही नहीं था, कौन से पीछे तो घूम करके बड़ा घुसे बाह्य रूप में क्रोध को प्रकट किया, कौन अंदर वाला प्रसन्न थी लेकिन बाह्य से विशेष रूप में राधारणी जैसे बाह्य क्रोध, उसने बाह्य रूप में क्रोधित होकर सख्य को कहकर आपने जो चुने थी ऊपर से उतर के उसको कृष्ण को डाल दिया, ऐसे पकड़ के मैंने बांध दिया सर पेट में चुनरी को बांध दिया, माँ चौसदा की तरफ इनको इतना टाइम नहीं लगा, राधारणी ने बहुत आशा ऐसे ही कहा कि चुनरी गांठ डाल दी, सखी को बड़े कैसे पकड़ो निकालो इसको रूम के बाहर है, इसलिए राधारणी ने भी कृष्ण को बांध दी कहाँ से पेट में ही ऐसा ही रस मैंने वही चुनरी जो था इसके ऊपर ही ऐसे बांध कर सखियों को सबको मिलाकर उसको खींच कर बाहर पे थे और कमरे से बाहर निकल, बोले निकालो इसको असमय में आ जाते इसको शर्म नहीं है, मेरे अंदर कक्के में सीधा घुस गया, इसको कौन परमिशन दिया जाने के लिए, तो इसलिए कहते कि इस महीना में ये लड़ा भी घटना भी हुआ था, तो यशोदा जिस प्रकार रस्सी में बांधी थी ये प्रसिद्ध है भागवत में रचना की कही, लेकिन राधारणी की प्रत्यक्ष लड़ाओं को व राधारणी के नाम को कभी भी सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहीं वर्णन नहीं करते, क्योंकि पोता है राधारणी की पोता है, राधा नाम लेते ही वो समाधि में आ जाएंगे, फिर ये लड़ा कहाँ से परीक्षित को सुनाएंगे है, इसलिए जानबूझ कर राधारणी की अंतरंग लड़ाओं को कृष्ण के साथ में उन्होंने ज्यादा वर्णन नहीं किया, राधारणी को डायरेक्ट यही उनके नाम उच्चारण नहीं की, तो अनयाराधित गुणाम एक श्लोक वो दसम अध्याय ने इस दसम स्कंध के 28 नंबर श्लोक से, तो केवल एक इनडायरेक्टली अनयाराधित गुणाम जो भगवान की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेविका जो भगवान को सेवा करने वाले में सर्वोत्तम वो है सर्वाधि सर्वश्रेष्ठ आराधिका अर्थात राधा की इनडायरेक्टली केवल है, तो इसलिए इस महीना दामोदर मास भगवान को चाहे यशोदा बंधे या कौन राधारणी बांधे, लेकिन ये भगवान बंधे गए इस महीने में, उधर में बांधा गया दामो उधर उधर में रस्सी में बांधा गया, इसलिए दामोदर मास है, इसलिए दामोदर के व्रत पालन करते हैं, इसके अलावा इस महीने में भगवान ने वरिष्ठासुर को बंध करके और बंध किए तो गोपिया लोग सब मिलकर बोले कि वरिष्ठासुर तो बैल का रूप में आया था और आपने बैल को मार दिया तो आपको बहुत क्या पाप लगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वह बोले क्या करूँ, गोपी आलिंगन करने गए बोले नहीं जानते स्पर्श मत करो, तुम गोहत्या क्या है गोवध क्या है, तो भगवान कहे कि गोवध क्या हूँ राक्षस था अभी तुम भयभीत होकर सबको यहाँ वहाँ भाग रहे थे तमाम रूप ऐसे ऐसे वृक्ष को आलिंगन करके हमको रक्षा करो चिंता चिल्ला रहे थे मैं मार दिया था, बोले वो बैल को मारा क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे बोला सभी तीर्थ में स्नान करके आना पड़ेगा, तुमने तीनों लोक में जितना तीर्थ सभी स्नान करोगे तो पाप का मुक्ति हो, तो भगवान के मैं जाऊँ तीनों त्रिलोक में स्नान तीर्थों में स्नान करने अहंकार से भगवान ने पूरे कमर में रस्सी बांधा इसको बाएं एड़ी को ऐसे जमीन पर आघात किए राधा कुंडली परिटग्राम उसको आते हैं आघात किए तो तालाब एक बहुत बड़ा तालाब जैसे बन गया और भगवान ने मन में सब तीर्थों को स्मरण किया है, सारे तीर्थ भगवान के स्मरण से ही सब आकर भर गए उसमें पानी पूरे भर गए, भगवान कहेंगे सारे तीर्थ इसमें आ गए सारे तीर्थ जल है इसी में स्नान करते हैं, बोले हमको क्या पता है सारे तीर्थ जल है कि क्या है, तो भगवान कहे कि ठीक है अभी सब तीर्थ जल तीर्थों को निर्देश दिए कि सब एक एक अपने परिचय देकर आगामी परिचय सब एक एक उठे हैं, मैं क्षीर सागर हूँ अपने स्वरूप में प्रकट होकर हाथ जोड़ कर आया, मैं लवण सागर हूँ मैं गंगा हूँ मैं जमुना हूँ मैं सरस्वती हूँ मैं प्रयागराज हूँ, सारे तीर्थ दुनिया के जितने भी तीर्थ सभी एक एक हाथ जोड़कर सुबह अपने अपने परिचय देते हुए राधारणी को दर्शन देकर फिर उस पानी में स्नान है, और भी क्या करेंगे तो भगवान ने तुरंत पानी में स्नान कर लिया, बड़ा अहंकार से कह के देखो अभी मैं सारे सारे तीर्थ में स्नान करके आया कि नहीं है, जाऊँ तीर्थ कर तीर्थ में स्नान कर, लेकिन तुम लोग गोपियाँ इतने निर्बुदिया जिंदगी में कुछ भी काम नहीं किया तुमने, मैंने इतने सारे राक्षस को मारा इतने सारे काम लीला किया बचपन से सारे ब्रजवासियों को रक्षा किया, अभी देखो इतना बड़ा सुंदर तालाब और सभी तीर्थों को लाकर इसमें रखा, लेकिन तुम लोग कुछ भी कई काम के नहीं हो, राधारणी बड़ा अंतर का अब तुम लोग जाओ आए के स्नान करो मेरा कुंड में, कहे कि तुम्हारे कुंड में तुम गोहत का पाप सारे इसी पानी में रख दिया हम इसमें स्नान नहीं करेंगे हम अपना कुंड बनाएंगे, इसलिए राधा तो राधारण ने देखा कि नहीं राधारण ने भी सखियों को इंगित की और जब फाइटिंग हो रहा था भगवान का और वरिष्ठासुर का, तो वरिष्ठासुर की पैर का दबाव में एक बहुत बड़ा गाढ़ा बना था और उसी गाढ़े को आया मैंने आशय करके सब गोपिया लोग ने अपने अपने कंगन को सब तोड़े हाथ में और सब खुदाई करने लगे। उस समय में लगभग एक घंटे में वो कुंड बना दिए, कच्छ पानी था नहीं है संक्षेप में बोल रहे थे कि पानी था नहीं, तो कहते हमारे कुंड से पानी ले लो। उसने बोला तुम्हारा कुंड है फिर पानी नहीं है, पानी ले लो मेरा कुंड में। भगवान देखा बोले तुम्हारे कुंड में तुम बोल दिया एक बार ये गोहत्याग पाप का सारे पानी है इसमें नहीं लेंगे पानी ना, हम लोग मानसी गंगा से पानी बढ़ करके सब तैयार हो गए कि लाइन लगा कि मानसी गंगा से पानी मरे लाइटी लाखों गोपियाँ है भरेंगे इस कुंड। लेकिन भगवान जी फिर बेकार कष्ट करेंगे लोग बड़ा दुखी हुए, तो उन्होंने तीर्थों को कहेंगे देखो आप लोग सब अनुरोध करो, मेरे बात ये सुनने वाला नहीं मानी नहीं है, तुम लोग सब हाथ जोड़ के बोलो, लेकिन बड़े दयामयी भी है आप लोग बोलोगे तो सुन ले। तो सारे तीर्थ लोग ने फिर प्रार्थना किया, उन्होंने हाथ जोड़ के हे राधी हे मदन मोहन मोहिनी हे राध हे कृपामयी स्नेह आम कृपा करके हमें आपका भी सेवा करने की मौका दीजिए, आपकी कुंड में हम निवास करना चाहते हैं, हमें आदेश दो हम कृपा करो। भगवान जब वो तीर्थ लोग ने प्रार्थना किया तो सभी तीर्थ तो समझ गए राधारण तो चर्ची देखी किसकी तरफ, कृष्ण की तरफ, ये सारा इसका बुद्धि है इसकी तरफ देखे। लेकिन और क्या कहें तीर्थ को बड़ा दयामय भी है, तीर्थ लोग ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें बोले आदेश दे दी ठीक जाओ जिसके साथ तीर्थ जो थे कृष्ण कुंड से घर कृष्ण आ गए राधा राधा कुंड की प्राकृति हुई। यदि वो पहले कृष्ण कुंड श्याम कुंड का प्रकट हुआ बाद में राधा कुंड, राधा कुंड की महिमा ज्यादा है क्योंकि राधा कुंड भगवान की बड़ा राधारानी प्रिय सी है, यथा विष्णु प्रिया राधा तस्य कुंडं प्रियं तथा सर्वभुवै का सर्वदा तथा विष्णु कृष्ण बल्लभ वा विष्णु बल्लभ भगवान विष्णु को जिस कृष्ण को जिस प्रकार राधारानी प्रिया है इसी प्रकार ये राधा कुंड भी भगवान को इतना ही प्रिय है। राधा कुंड प्रकट हो गया, भगवान ने तुरंत वरदान दिए हे राधा तुम्हारे कुंड में जो भी स्नान करेगा एक बार जेहू करे यही कुंडे स्नान राधा सम कृष्ण प्रेम कृष्ण करे राधा। ये राधा कुंड में जब एक बार भी स्नान करेगा लेकिन कृष्ण कृष्ण उसको राधा के समान प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो ये भी इसी महीना में ये दोनों कुंड की आविर्भाव हुआ, कौन सा राधा कुंड श्याम कुंड। लेकिन ये कहने पर भी राधा कुंड में स्नान करने का योग्यता हमारे पास होना चाहिए, कोई बात नहीं प्रारंभ से तो भक्त लोग को मना नहीं करते थे, लेकिन बाद में ये भक्त लोग क्या करने लगे सब राधा कुंड श्याम कुंड में जाकर क्या करने लगे स्विमिंग करने लगे। 1975 में प्रभुपाद जी ने मना किया कोई भी राधा कुंड में पैर नहीं डाले। प्रभुपाद जी के आंख से एक बार सारे विदेशी भक्तों को लेकर आए थे काफी उनको वहाँ गए थे स्नान सब लोग कूदने लगे कूद के सब डरने लगे मस्ती करने लगे एक दूसरे को पानी छोड़ने। तो भगवान प्रभुपाद जी ने इतनी दुखी हो गई बोले कि राधा कुंड श्याम कुंड राधा कृष्ण की गली स्थली है तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मस्ती के लिए नहीं है, तुम लोग इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर इसमें मस्ती कर रहे हो, ये राधा रानी को किक मार रहे हो। राधा रानी और राधा कुंड में कोई फर्क नहीं है, राधा रानी के राधा कुंड की जो जड़ है राधा रानी से अभिन्न है, ये राधा के प्रेम का ही प्राकट्य है, कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम का प्राकट्य है, तुम लोग क्वालिफाइड नहीं है। आज से मेरा निर्देश है कोई भी राधा कुंड के जड़ में उतरेगा नहीं, चरण नहीं रखना, चरण रखना ही पाप है, क्योंकि राधा कुंड राधा रानी को ही चरण स्पर्श कर लिया है, तुम लोग क्वालिफाइड नहीं इसलिए नहीं था। प्रभुपाद ने आदेश दिया था इसमें जो भी उस समय घटना में थे राजा को उसमें आज भी प्रभुपाद के जो घनिष्ठ शिष्य है वो स्नान नहीं करते उतार तो नहीं प्रभुपाद के बड़े भक्ति के साथ प्रणाम करो राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम करते हुए आचमन करके पानी लेकर सिर में बस धारण कर लिया तो ये स्नान है, लेकिन उतर कर मस्ती करना नहीं राधा कुंड। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड की भी प्राकृति इस महीना में हुआ और कई गोवर्धन का पूजा भी इस महीना में नंद महाराज ने किया, आप घटना जानते हैं वो सारे कहेंगे कहने के लिए टाइम समय नहीं, समय भी आपको होगी आपको भूख भी लग गया होगा हैं। और अंतिम में कई व्रत है दीपावली सब बहुत व्रत इस महीने में गोपाष्टमी, जैसे गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गोपाल बने गाय चराने के लिए गए, माँ यशोदा ने दोनों कृष्ण बलराम के लिए क्या बनाए कढ़ाव बनाकर लाए बना सोने की बहुत सुंदर कढ़ाई बना के रखे थे, लेकिन कृष्ण बलराम कहे कि हम इसको भगवान कहे कि मैं नहीं पहनूंगा कढ़ाव भैया ये किसके लिए ना तुम दोनों लाला कृष्ण का तुम्हारा बाबू जी का पहन लो और छत्री भी कढ़ाव और छत्री लेके जाना पड़ेगा जंगल में कई प्रकार के कंकड़ पत्थर वहां पर सब है पैर में चुहेगा। भगवान ने कहे कि मेरे गाय की क्या होगा मेरे गाय के क्या होगा, उन्हें तो खाली पेड़ में चल रही है, उनकी तो छतरी नहीं है, वो भी धूप बारिश में जाएंगे। मेरा नाम गोपाल है, गाय को रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरे गाय नहीं छत्ता धारण करेंगे, जोता धारण नहीं करेंगे, मैं कैसे धारण कर सकता हूँ? तो क्या भगवान ऐसे देकर उन्होंने कुछ बहाना करके स्वीकार नहीं किया। ब्रज में जब तक रहे भगवान ने नंगे पैर में घूमे, कभी छतरी धारण नहीं किए। गोपाल के रूप में, गोविंद के रूप में उनके नाम प्रसिद्ध है। ब्रज की महिमा इसीलिए, क्योंकि भगवान के चरण डायरेक्ट धरणी को, धरा को केवल ब्रज में ही स्पर्श करता है। अन्य स्थान पर आते तो मथुरा में द्वारका में तो पैर में क्या रहा था, जूता। तो ये भी गोचारण की लीला इसी महीने में स्थान थे, इसलिए गो पूजा, गोवर्धन की पूजा दीपावली के नेक्स्ट दिन में प्रतिपद में गो पूजा और गोवर्धन पूजा, गिरिराज की पूजा, ये भी स्कंद में उपाधि ने स्थापना किया। तो उपाधि ने अंतिम समय में जब शरीर त्याग ठीक दो दिन पहले इच्छा प्रकट किए थे कि गिरिराज की परिक्रमा करनी है, लोकनाथ महाराज को आदेश दिए थे कि बैल का गाड़ी बनाना, चलने के सब में बैल का गाड़ी में मुझे जाना है। लेकिन दूसरे शिष्य लोग ने मना किया, प्रभुपाद की स्थिति में वो कैसे बैलगाड़ी में ले जाएंगे, गिरिराज की परिक्रमा बंद कराया था। लेकिन एक गिरिराज की पूजन भी इसी महीने में आता है, गिरिराज की पूजन, गो पूजा, बलि दैत्यराज की पूजन होता है। इस दिन गिरिराज की पूजा, उसके नीचे लिखा रहता है कि बलि दैत्यराज पूजन, बलि दैत्यराज को लक्ष्मी जी ने पूजा की थी इस महीने में। इसी महीने में ही बलिराज से सब बलि बलि से सब कुछ हरण कर लिए थे, कौन, भगवान बामन ने तीन पैर में सर्वस्व छीन लिए थे और समस्त राज्य राज्य, और अंत में अल्लाह वो स्वयं बांध गए उनकी भक्ति में, सुतौल लोक में जाकर दरबार बंद कर बलि महाराज के राज्य में रहे। लक्ष्मी जी ने ढूंढते ढूंढते अपने पति को ढूंढा, नारद जी को पूछा बाद में, मेरा पति कहाँ है? नारद जी ने कहे, तुम्हारा पति तो चौकीदारी कर रहा है उधर सुतौल लोक में। लक्ष्मी क्या बोल रहे हो नारद जी, ऐसा उपहास करने का कोई सीमा होता है? नारद जी खुद जाकर देख लो। लक्ष्मी ने जाकर देखी कि भगवान खा रहे हैं, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बैकुंठ में। भगवान कहे कि मेरी शक्ति नहीं है, ये बलि मुझे बांध लिया है। किसकी बल पर? उसकी भक्ति की बल पर मुझे बांधा है। बलि जब तक आदेश नहीं देगा मैं यहाँ से जा नहीं सकता, जैसे माँ यशोदा ने बांध ली कृष्ण को, इस प्रकार बलि महाराज ने अपने भक्ति से बांध दिए थे। किंतु बांध ले सरस्वत ले ली, लेकिन स्वयं को दे दी, सबसे लेकर सब स्वयं को दे दी। कहते दो रात पर खड़े तो इसलिए बलि दे, बलि ने स्वयं लक्ष्मी जी ने जाकर पूजा की। किनकी? बलि महाराज की। सारे जगत सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की पूजन करती है, लक्ष्मी स्वयं जाकर बलि महाराज की पूजन करती, रो रो कर प्रार्थना की कि मेरे पति को वापस कर दो, बलि मेरे पति को वापस कर दो। इसलिए बलि दैत्यराज की पूजन इस महीना में, बलि की पूजन स्वयं लक्ष्मी जी किए थे। अरे वरदान, जो बलि दैत्यराज की पूजन नहीं करेगा उसकी लक्ष्मी उसके घर में उसकी प्रति सुदृष्टि नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी ने कहेगी जो बलि तुम्हारा पूजन नहीं करेगा आज के दिन, गोवर्धन की पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा नहीं होगा, तो मेरा शुभ दृष्टि पति नहीं रहेगा। तो इसलिए बलि दैत्यराज की पूजन की जाती है। अंत में जो कई व्रत आएंगे, अंतिम में जो है पांच दिन का महीने विष्णु पंचक, यदि कोई सारा व्रत धारण नहीं कर पाएगा चतुर्मासी कार्तिक महीने के पूरा व्रत, तो कम से कम पांच दिन व्रत धारण करें। जिसको भीष्म देव ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में पालन किए थे, पांच दिन में पहला दिन में केवल थोड़ा गोम माने पांच गाय की जो पांच चीज है गाय से प्रस्तुत उसी को खा के रहना पड़ता है। पांच दिन पहला दिन में थोड़ा सा गोमूत्र पी लेने का और कुछ खाना नहीं, जैसे प्रकृत विधि रखना, कुछ लोग पूरा नहीं रख पाते थोड़ा फल फल खा ले, लेकिन जो प्रकृत विधि है पहला दिन केवल गोमूत्र पी के रहना, दूसरे दिन में गोबर है, फिर तीसरे दिन में थोड़ा है दूध, फिर दही और दही, फिर दूध, और अंतिम दिन में घी। ऐसा ही पांच दिन व्रत रखना पड़ता, अंतिम दिन में शाम को पूर्णिमा का दिन एकादशी से व्रत प्रारंभ होता है, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा पांच दिन का, पूर्णिमा की शाम को फिर पूरे पूर्णिमा का दिन भगवान को जागरण कराना, हरि जागरण करके उनकी रथ यात्रा महोत्सव यदि आप संभव है तो भगवान को लेकर किसी पवित्र तीर्थस्थल में स्नान कर जागरण करा के स्नान करा के फिर इनको रथ में बैठा कर नगर में घुमाना संकीर्तन महासंकीर्तन के साथ संध्या समय में, फिर उनके प्रत्यार्थ में बहुत बड़ा भोजन करके ब्राह्मण वैष्णव को खिलाकर फिर अंत में स्वयं खाना चाहिए। ये भीष्म पंचक की विधि सुंदर भाव से हरिभक्ति विलास में वर्णन की गई। समय हो गया, इसलिए यदि कोई सारा व्रत नहीं कर पाएगा तो भीष्म पंचक व्रत धारण करें पांच दिन अंतिम कार्तिक महीना के। और इस महीना के पास पांच जो मुख्य व्रत मुख्य चीज है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, रात्रि के अंतिम प्रहर में सोना नहीं, तीन घंटे पहले सूर्योदय के समय जग जाना, और स्नान करना पवित्र जल में, ये तो सब इसका विभाग तो करते ही, स्नान करना, सुबह भगवान की आरती उतारना, कीर्तन करना भजन कीर्तन के साथ है, और तुलसी महाराण की सेवा की जाती है। उसके बाद आप मंगला आरती की बात करें, तुलसी महाराण की सेवा को ऊपर में सारा सिस्टम दिया है। तुलसी महाराण की फिर वंदना अर्चना होती है और तुलसी महाराण के रक्षण व्यक्षण तुलसी गार्डन बनाना, ये सब कार्तिक महीना यदि कोई करता है बड़ा पूर्व में उसको मिलता है। और बा भक्ति के महान भक्ति भक्त बन जाते भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होता है तुलसी के अर्चन और अंत में दीपदान, दामोदर का अर्चन और दामोदर को सायंकाल में दीपदान। काल दीपदान के बारे में विशेष चर्चा हो गया था क्लास में। अभी ये सारे सिस्टम प्रभुपाद ने दिया हम, हमको कुछ करना है अपना कुछ करना, जितने हम कर पाएंगे सारे दिए हैं प्रभुपाद ने। कहीं कुछ हमको पृथ्वी व्रत में कुछ करना नहीं, जैसे कुछ लोग करते बड़ा ऑस्ट्रेलिया करके कुछ खाते नहीं है, ऐसे जमीन में गाढ़ा बनाकर मुख ऐसे लगा कि कुत्ता की तरफ जितनी खा पाते उतने खाते हैं, ऐसे चतुर्मा से व्रत करते हैं लोग कुछ है? ये नहीं खाना वो नहीं खाना बहुत कुछ हो जो सारा रीति गोपाल में ये सब जरूरत नहीं है, इतना कठोर करने का आवश्यकता नहीं। मायापुर में प्रभुपाद के समय में भी भक्तिचारु स्वामी महाराज ने चतुर्मास व्रत रखे थे और वैसे ही करते थे, खाते जैसे शास्त्र भक्ति सबसे ठाकुर वैसे कठोर पालन करते थे। केवल एक टाइम खिचड़ी बनाकर ऐसे जमीन में डालकर ऐसे गाढ़ा जितने हाथ को सर पीछे करके मुख लगा के जितने खा सकता है इतने खा के दिन रात बैठकर जप करते भजन करते थे। प्रभुपाद ने आए तो आकर बोले कि सबको देखे बोले भक्तिचारु कहाँ गए, बोले महाराज ने बोले प्रभुपाद वो तो चतुर्वासी व्रत करते हैं, गंगा में तीन बार स्नान करते हैं और खाते नहीं, दिन में सिर्फ थोड़ा सा ऐसे खिचड़ी जो उनके जमीन में डाल के जितनी खा सकते मुख लगाई खाते हैं। प्रभुपाद बोले कि बोलाओ भक्ति करते इधर जब महाराज आए और प्रभुपाद जी राजभोग खा रहे थे, राजभोग ब्राह्मण के राजभोग का प्लेट बैठकर भोजन खा रहे थे, तो आपने वही खा रहे थे भोजन जो प्रसाद लेते उसी हाथ में प्रसाद लेकर बोले भक्तिचारु वो महाप्रसाद राजा माधव के महाप्रसाद का तुम्हें प्रभुपाद ने चतुर्मासी व्रत रखा नहीं, मैंने दो बार कुछ बोले नहीं, एक बार दो बार गया, तीसरी बार जब प्रभुपाद बोले प्रभुपाद ने चतुर्मासी राम व्रत रखा हूँ, इसलिए कई चीज़ खाता हूँ कई चीज़ नहीं खाता हूँ और नहीं बड़ा जैसे राधा माधव महाप्रसाद है, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट बाय डूइंग दिस चतुर्मासी व्रत, आई कैन गिव 10,000 टाइम्स मोर बेनिफिट बाय सिंपली पुटिंग माय फीट ऑन योर हेड। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे अपने नीति को प्रोत्साहित नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो कुछ व्रत करोगे शास्त्र के आधार पर भी गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, यदि भी हम कोई व्रत धारण करते हैं तो उसी के अनुमोदन होना चाहिए, किसके द्वारा गुरु के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, यदि गुरु का अनुमोदन नहीं है और हम कोई व्रत धारण करते तो व्रत का फल हमको मिलने वाला नहीं है, भगवान दामोदर उससे प्रसन्न नहीं होंगे। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य अप्रसादान नगति कुतो, इसलिए हम जानना चाहिए कि चाहे कार्तिक व्रत हो चतुर्मासी व्रत कोई भी व्रत धारण करते हैं जैसे सिस्टम प्रभुपाद जी ने हमें दिया है उसी को फॉलो करना है, इसकर में जैसे सिस्टम प्रभुपाद जी ने स्थापना किया उसी को फॉलो करके हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते, प्रभुपाद जी ने जितने दिए ऐसे उठे शाम के समय जैसे दामोदर को केवल दीपदान करना दामोदर अष्टक गाना उसकी माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहीं पर हम कक्षा को विश्राम देते हैं, लेकिन अंतिम में दामोदर अष्टक गाना चाहते हैं, लेकिन लाइट भी चला गया है,
लाइट चला गया
तो गाएं कि ना गाएं, लाइट भी गया तो दामोदर सीट सब दे दो ना, लोग को दिए इसको बंद कर दिया, दामोदर अष्टक इसमें कहाँ है, ढूंढो इसमें, नमामि शिवाय उसमें ढूंढ के दे दीजिए, इसमें गाना मुझे इसका अभी दामोदर अष्टक गाएंगे तो लाइट नहीं आएगा भाई है, जनरेटर नहीं है,
जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की, दामोदराय दत्त की, कार्तिक भट्ट की, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की, श्री राधा की, धनी भगवान की जय, जगन्नाथ देव सुभद्रा महाराज की जय, सीताजी नाम देव।
हरे कृष्ण महाराज जी, कार्तिक व्रत श्री प्रभुपाद जी गई सरस्वती महाराज की। महाराज जी का बड़ा आभार प्रकट करते हैं, बड़े सुंदर से कार्तिक महिमा और कार्तिक में भगवान ने जो लीला की है इसका वर्णन किए हैं। महाराज जी तीन दिन से कार्तिक का विधि और महिमा बताएं और आज के दिन लीला बताएं, वृंदावन से समय निकाल कर आए हैं और हम सबको बहुत ही प्रोत्साहन प्रदान किए हैं भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए। सुंदर बातें बताएं, विशेष रूप में वे प्रभुपाद जी का महिमा भी इस कार्तिक महिमा के अंतर्गत बता दिया, किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हम सबको एक सरल विधि दिए। कार्तिक महिमा में पांच व्रत है, एक है प्रातः जल्दी उठना, दूसरा है दीपदान,